सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं सी सेट की तैयारी के बारे में आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। ये जानते हुए भी कि अब नया करने को कुछ रह नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम रिफाइन तो कर ही सकते हैं चीजों को। जैसे जूते में पॉलिश करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, कल ही जूते में पॉलिश की थी, लेकिन अगर आपने उसे थोड़ी देर के लिए भी पहना है, और अगर नहीं भी पहना है, रखा ही हुआ है, तो उस पर अगर आप ब्रश मार देंगे तो जूता चमक जाता है। अब तो हम लगभग इसी दौर में पहुंच गए हैं, तो मैं सी सेट के बारे में बातें करूंगा। एक दो बातें जो मुझे मेल से मिली है, मुझे लगता है कि वो स्पष्ट कर देनी चाहिए। एक मेल मुझे मिला है कि सर, मेरा जहां सेंटर है, वहां से मेरा जो स्थान है जहां मैं रह रहा हूं, लगभग 125 किलोमीटर दूरी पर है, तो यदि जिस दिन मेरा एग्जाम है उसी दिन अगर मैं वहां जाता हूं तो मुझे इतने घंटे का सफर करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, फिर वहां पहुंचूंगा मैं थक भी जाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या एक दिन पहले वहां पहुंच जाना चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका क्या उत्तर होना चाहिए? उत्तर बहुत स्पष्ट है, जी हां, आपको जिस तरीके से अपने मानसिक और शारीरिक संतुलन को बना करके वहां रखना है और 2 घंटे के गैप के बाद फिर सी सेट का पेपर देना है, जो इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है, किसी भी मायने में कम तो नहीं ही है, तो सीधी सी बात है कि आप एक दिन वहां जाकर पहले से रहें, और केवल रहें ही नहीं, बल्कि बेहतर होगा कि जहां आप रुके हुए हैं वहां से जो भी आप साधन ले रहे हों, जाकर अपने सेंटर को देख भी आए। हालांकि जिन्होंने मेल लिखा है उन्होंने बताया है कि उसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है, तो उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि हो सकता है कि उन्होंने ये प्रश्न पूछा है तो दूसरों के मन में भी कुछ इस तरह के संदेह आ रहे हों, तो आपको किसी द्वंद्व की स्थिति में नहीं रहना है, किसी भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है। आप इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, इतने समय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी सुविधा का ध्यान मत रखिए कि नहीं मैं सीधे से जाऊंगा तो चलो कौन वहां जाए नई जगह पर और एक दिन रुके और उसका फिर पेमेंट भी करे, खर्चा भी लगाए। नहीं, जो भी खर्चा होगा वो वर्थ गिविंग है, यानी कि वो देने योग्य है, उसका आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आप सब भी अगर मेरी बात से सहमत हो तो इस तरह से निर्णय ले सकते हैं। सी सेट को लेकर के भी काफी मेरे पास मेल्स आए हैं, और इसीलिए मुझे लगा कि सी सेट पर कुछ बातें की जानी चाहिए। और भी जिन विषयों पर हम लोग बात कर चुके हैं उन पर भी अगर जरूरी हुआ तो फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जब तक अब आपका प्री एग्जाम नहीं हो जाता तब तक शायद हम लोग इसी तरह से प्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही डिफरेंट जो इश्यूज हैं उन पर बातें करते रहेंगे, और ऐसा होना भी चाहिए, ज्यादा व्यवहारिक मुझे मालूम पड़ रहा है। दोस्तों, पहली बात तो यह कि जो सी सेट का पेपर है यह बहुत चैलेंजिंग पेपर है, मैंने देखा है, एक नहीं बल्कि कई को देखा है कि जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में उनका स्कोर बहुत अच्छा है, जो कट ऑफ मार्क्स है उसे 10% अधिक मार्क्स है। सोच के देखिए, कट ऑफ मार्क्स से 10% अधिक है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि वो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, और सी सेट भी कितने से चूका, 0.01% या कुछ इस तरीके से चूका। बस ऐसा नहीं कि सी सेट में भी कोई बहुत पिछड़ गया हो, और मैं स्पेशली एक ऐसे स्टूडेंट को तो जानता ही हूं कि जो सी सेट को अगर क्वालिफाई कर चुका होता, प्री तो उसने क्वालिफाई कर ही लिया था, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं, तो मेंस भी वो क्वालिफाई कर जाता, और वो बोलचाल में इतना स्मार्ट था, नॉलेज भी था, दिखने में भी स्मार्ट था, अगर इंटरव्यू तक पहुंच गया होता तो डेफिनेटली वो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाता। सोच करके देखिए कि सी सेट की एक छोटी सी चूक ने उसके जिंदगी के स्वरूप को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया, कहां वो होता और कहां अभी कुछ भी नहीं है वो, लेकिन फिर से वो तैयारी कर रहा है, और हम लोग ईश्वर से चलिए प्रार्थना करते हैं कि उसे सफलता मिले। इसके जरिए मैं केवल जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि सी सेट का जो पेपर है वो बहुत ही चैलेंजिंग पेपर है। नो डाउट कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, साइंस के बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स के बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए अपेक्षाकृत आसान हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम ये मान करके चलें कि ये जो सी सेट का पेपर है क्या सबके लिए समान प्लेइंग फील्ड अवेलेबल कराता है, इक्वल प्लेइंग फील्ड, तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं कराता, इक्वल प्लेइंग फील्ड तो अवेलेबल नहीं कराता। इसमें 2 सबसे बड़े संकट हैं। पहला तो ये है कि जिस तरह से रीजनिंग और जो दूसरे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वे बकायदे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने IIM किया हुआ है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। पहले तो इसके मार्क्स भी जुड़ जाते थे जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के साथ, फिर मेरिट लिस्ट बनती थी, अब कम से कम उसे हटाया गया है। तो उनको कोई भय नहीं रहता। दूसरा जो सेम प्लेइंग फील्ड के अगेंस्ट में जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज को लेकर। जो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है इसकी वो अच्छी नहीं है, खासकर जो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन होता है जिसे आप बोधगम्यता कहते हैं, उसमें जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज होती है, वो काफी कठिन सी होती है। कहीं कहीं तो इतनी कठिन हो जाती है कि उसके अर्थ को समझना मुश्किल हो जाता है। जब हम भाषा के अर्थ को ही नहीं समझ पा रहे हैं, भाषा को जब हम आत्मसात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए सीधी सी बात है कि फिर हम उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर कैसे दे पाएंगे। और मुश्किल काम यह है कि अगर हम हिंदी के वर्जन को देखने के बाद इंग्लिश के वर्जन को देखते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए, कोई बात नहीं, टाइम पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो समय ज्यादा लगता है और पता नहीं तब भी समझ में आए या न आए, क्या गारंटी है? पता लगा अंग्रेजी में भी इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया या इस तरह का फ्रेज है जो हमारी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो ये तो इत्तफाक की बात है, लेकिन फिर भी पहला पॉइंट कि अगर आपको हिंदी का कोई शब्द कठिन लग रहा है, वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है और आपको जरा भी ये विश्वास है कि नहीं अंग्रेजी इतनी तो ठीक ठाक है ही कि मैं शायद समझ लूं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। समय के बारे में मत सोचिए कि समय बहुत कम है और मैं कैसे करूंगा, समय मेरा खराब हो जाएगा। नहीं, खराब कैसे होगा, आप समय का उपयोग कर रहे हैं ना। और इससे अच्छा समय का उपयोग क्या होगा कि आप प्रश्न को समझने में समय लगा रहे हैं, तो ये समय खराब नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो सी सेट का जो पेपर है, इसकी तैयारी के मामले में मुझे जो एक रामबाण नुस्खा जो दिखाई देता है, जो समझ में आता है, वो ये है कि जो कम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है उसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। कम्प्रिहेंशन जिसे आप बोधगम्यता कहते हैं, हर साल 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं सी सेट में। तो आप क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, 25 से कम कभी नहीं पूछे गए, मैक्सिमम 27-28 तक भी गए हैं, नहीं तो 25 क्वेश्चन तो कम्प्रिहेंशन से होते ही होते हैं। अब सीधी सी बात है, अगर हम बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर सोचें तो जिस किसी पर्टिकुलर टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हों 25 out of 80, तो सीधी सी बात है कि हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, अपनी ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 25 में 25 आपके सही होंगे, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी ज्यादती होगी, आप कितनी भी मेहनत करेंगे शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आप वहां तक अपने आप को जरूर पहुंचा देंगे कि दूसरे सेक्टर से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद आप सी सेट की बैतरणी को पार कर सकते हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब देखिए आपके पास कितने दिन का समय बच गया है, ज्यादा समय नहीं बचा है। आप लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और प्रैक्टिस के बाद वहां कुछ आसान आप महसूस कर सकेंगे तो आपकी मर्जी है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो मैं सलाह दूंगा कि प्लीज आप सी सेट के तहत जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें अच्छे तरीके से तैयार करें। तैयार करें कि इसके दो भाग हैं। पहला भाग है जो उसमें वर्ड्स दिए जाते हैं, निष्कर्ष क्या है, कॉरोलरी क्या है, इस तरह के शब्द दिए जाते हैं, उनके अर्थ आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए कि इसके तहत पूछा क्या जा रहा है, इसके तहत मुझे क्या ढूंढना है। अगर आप वही मार खा जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। और बकायदे इसके पर्टिकुलर अर्थ होते हैं, और अगर आप गूगल में भी चले जाएंगे या अगर आपने कहीं कोचिंग ली होगी तो उन्होंने समझाया होगा कि भाई जो इस तरह के शब्द आए हैं तो उस शब्द का अर्थ क्या होगा। वो सामान्य से शब्द नहीं होते है ना, उनके अपने अर्थ होते हैं। जैसे पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, अब पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये पूर्व धारणाएं क्या है, एजम्पशन हम किसको कहते हैं। सामान्य तौर पर तो पूर्व धारणा शब्द को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे दूसरे बहुत से शब्द होते हैं जिनके बहुत ही एग्जैक्ट अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। तो दोस्तों, इसकी तैयारी का जो सबसे पहला अंश होगा वो ये है कि जो शब्दों के अर्थ हैं उन्हें घुमा फिरा कर इधर उधर से बार बार आप दिमाग में बिल्कुल रट लीजिए। रटने से बात नहीं बनेगी, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो दूसरा पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट ही है वो है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आपने शब्दों के अर्थ समझ भी लिए तो उससे क्या होगा? प्रैक्टिस ही आपको बताएगा ना कि कैसे चीजों को फिर अब उस अंश में से निकाला जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, कैसे उसे समझा जाता है, किस तरीके से वो आपको भ्रम में डालते हैं, आपको छकाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब बातें प्रैक्टिस से आएंगी और प्रैक्टिस से ही जो टाइम का जो ड्यूरेशन होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकेगा। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। तो फिलहाल दोस्तों, मेरी सलाह सी सेट की प्रिपरेशन के लिए यही है कि जो शब्द हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए, और दूसरा ये है कि प्रैक्टिस कीजिए। बाकी की आप कितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। आगे हम लोग इस पर और कुछ बातें करेंगे। अगर आप लोगों के कुछ विशेष प्रश्न हो तो आप मुझे लिख करके भेजें, उन्हें भी मैं शामिल कर लूंगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज है 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होने वाली है। इसके लिए राउरकेला ओडिशा से हैं गुन्नू मांडी, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो गुन्नू जी, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। देवी दत्त हरियाणा से, शुभम क्षीरसागर महाराष्ट्र से, हसमुद्दीन अत्तारी जमशेदपुर से, प्रेम कुमार और सूरज, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।